राम राम हरे 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 कृष्ण। तो श्रीमान धर्म क्षेत्र और क्या शारदा महत जी सत्या शक्ति राधा महत जी और धर्म क्षेत्र प्रभु जी के निवास स्थान पे श्रावण के महीने में बलराम पूर्णिमा रक्षाबंधन के दूसरे दिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था पूरे विश्व के लिए। इट वॉज मोस्ट ऑस्पिशियस डे फॉर द होल यूनिवर्स। कल का दिन लोगों को अभी मालूम नहीं है, हो सकता है आने वाले भविष्य में फ्यूचर पीपल में रियलाइज 3 अगस्त का दिन कितना महत्वपूर्ण था। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। जिसका प्रणाम मंत्र अभी हमने उच्चारण किया अभेचरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कल के दिन 70 साल की आयु को पहुंचते हुए भारत में वृंदावन धाम को अपने हृदय में धारण करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी फोरकास्ट के दुनिया के कोने कोने में हर नगर और शहर में टाउन और विलेज में हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण होगा, कीर्तन होगा और लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की कृपा को प्राप्त करेंगे, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु का फोरकास्ट था। और उसको सार्थक करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए, उसको स्पष्ट रूप से दुनिया के आगे के भगवान के वचन सत्य हैं, इसको सार्थक करने के लिए कल के दिन श्रील प्रभुपाद भारत से कलकत्ता में से अपने जन्मभूमि से पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए निकले थे। आज जो जहां जहां आप दुनिया में जाते हैं, चाइना रशिया में जाओ या ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में जाओ या अमेरिका में जाओ, जहां भी आपको हरे कृष्ण का मंत्र जानने ऐसा जाना पहचाना, हरे कृष्ण हरे राम दुनिया सब जानती है और दुनिया के कोने कोने में भव्य मंदिर बने हुए हैं राधा कृष्ण के, सीताराम के, जगन्नाथ भगवान बलदेव सुभद्रा के, एक व्यक्ति वन पर्सन का ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी निष्ठा है, बहुत बड़ी डिटर्मिनेशन है। उस 70 साल के व्यक्ति ने दुनिया के अंदर भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति को ऐसा अद्भुत रूप से आंदोलन के रूप में, रिवोल्यूशन के रूप में स्थापित किया। और जब भी हिस्टोरियन लिखेंगे तो 3 अगस्त का दिन बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। तो आज 4 अगस्त को हम यहां बैठकर लवेनिया का मतलब भविष्य, फ्यूचर, तो हमारा फ्यूचर कैसे उज्जवल हो, हमारा भविष्य कैसे शाइन करे, उसके लिए थोड़ा विचार करना चाहिए। भविष्य का मतलब जो हमने देखा नहीं है, जो आने वाला है, वो भविष्य सबका एक ही है। कहते हैं कि अच्छा हमारा फ्यूचर होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में थे और एक अमेरिका की न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी, वो थोड़ी नाटी थी और बहुत उसका पूछने का तरीका जो है वो टांटिंग जैसा था, बोला स्वामी जी आप अमेरिका में आए हैं और अमेरिका के लोगों को क्या सिखाओगे जबकि भारत के अंदर डेथ रेट ज्यादा है, तो भारत के लोग भारत में तो डेथ रेट ज्यादा है, अमेरिका के लोगों को आप क्या शिक्षा देंगे। प्रभुपाद ने उसकी तरफ देखा, बोले देयर इज 100% डेथ रेट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। दुनिया में जो जन्म लेता है वो सब मरता है क्या? अमेरिका के लोग नहीं मरते हैं क्या? तो डेथ रेट आपके यहां भी 100% है, और अमेरिका में भी 100% है, और इंडिया में भी 100% है, और मॉरिशस में 100%, और हमारा भविष्य यह है कि हमको मरना है। एक किताब लिखा है एक प्रभुपाद की बहुत प्रेमी अनुयायी ने, मास्टरिंग योर डैश, डैश मतलब फुल स्टॉप, मास्टरिंग योर डैश। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ये पुस्तक में है क्या। तो अंदर उसने लिखा है कि मरने के बाद आदमी के जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि के बीच में एक पॉइंट होती है, बर्थ डेट और डेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बीच में एक पॉइंट होती है, वही जीवन है। उसको कैसे परफेक्ट करें, यही एक हमारा भविष्य में काम करना है। इतनी एक छोटी सी अवधि है, ये बहुत कम समय है हमारा जीवन का, 80 साल 70-80 साल बड़ा समय नहीं है। इस समय में हम सोचते हैं कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ यही धरा रह जाएगा। फ्यूचर ये है कि एक दिन यहां से जाना है। ये बात समझ में आ रही है? किसी के पूछा तो इसके बाद क्या करेगा, बोला पढ़ लूंगा। पढ़ लिया फिर क्या करेगा, सर्विस करूंगा। सर्विस करके फिर क्या करेगा, कंपनी खोलूंगा। कंपनी खोल के फिर क्या करेगा, कमाऊंगा। कमाया फिर क्या करेगा, घर बनाऊंगा। बना लिया फिर क्या करेगा, गाड़ी लूंगा। ले लिया फिर क्या करेगा, शादी करूंगा। फिर क्या करेगा, बच्चे। फिर बच्चों की शादी करूंगा। फिर और फिर कहना पड़ेगा फिर मरूंगा। ये सब कुछ करके फिर यही कहेगा, इसके बाद सब कुछ समाप्त। तो बात ये सोचने की है कि इसका मतलब मृत्यु के बाद जो फ्यूचर है उसके बारे में जो सोचता है वो बुद्धिमान है। वाइज मैन वो है, वैदिक लैंग्वेज में वाइज मैन वो है जो इस शरीर के छूटने के बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। ये शरीर तो वैसे भी छूटना है एक दिन, कोई ये रहने वाली चीज नहीं है। इसके बाद हमारा फ्यूचर ये है कि हम एटर्नल लाइफ को प्राप्त करें, जहां मरण जन्म न हो, जहां दुख न हो, जहां बीमारी न हो, जहां एटर्नल हैप्पीनेस हो, जहां सुख कभी समाप्त होने वाला न हो, अनंत सुख हो, उसकी प्राप्ति करो। उसको बोलते हैं फ्यूचर को ढूंढो। इस दुनिया में क्या फ्यूचर ढूंढेगा, आपको क्या चाहिए? एक आदमी था समुद्र के किनारे, बहुत अच्छा धूप निकला हुआ था, रेत के ऊपर सन बाथ ले रहा था। तो उस वक्त का सबसे बड़ा धनी दुनिया का व्यक्ति मानो फोर्ड आदि उसको देख कर, मूर्ख तुम क्या कर रहा है यार, समुद्र के किनारे बेकार में यहां पड़ा है, कुछ काम नहीं करेगा। बोला आप कौन है? बोला नहीं जानते हो मैं कौन हूं, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूं। बहुत अच्छा, तो फिर अब आप क्या करोगे? बोला देखो पूरी दुनिया के अंदर मैंने कंपनी, मेरी कंपनी की गाड़ी दुनिया के कोने कोने में चलती है, हर देश में चलती है। हाँ बहुत अच्छा हुआ। फिर बोला फिर हर हर जगह मेरी ऑफिस है। बोला और फिर क्या करोगे? फिर दुनिया के अंदर हमारा नाम होगा सबसे, हो गया फिर क्या करोगे? बोला फिर समुद्र के किनारे बहुत अच्छा बंगला बनाऊंगा। बोला बन गया फिर क्या करोगे? बोला जब धूप निकलेगी तब धूप में सो के बड़ा आनंद लूंगा। बोला वो तो मैं अभी ले रहा हूं। तू ये सारा झंझट करके फिर आके ये सुख लेगा ना, वो तो मैं अभी ले रहा हूं, तुम काहे के लिए परेशानी कर रहे? तो घूम फिर के तुम्हें करना तो यही है ना, ये सब कुछ करके फिर भी तुम्हें समुद्र के किनारे आके सोना ही है, तो मैं अभी तक सोया हुआ हूं। तो हमारा कहने का आपको बात यह है कि सब कुछ इकट्ठा करके फिर छोड़ना पड़ेगा। किसी के साथ इस दुनिया से कुछ आज तक गया नहीं है, भविष्य में कभी जाएगा नहीं, ये ऐसा सत्य है। इसको न मानने वाला मूर्ख है। मूर्ख है जो समझता है कि मैं इस दुनिया से कुछ इकट्ठा करके ले जाऊंगा। कोई ले गया है आज तक? एक बात बार भारत के उस जमाने के एक संत पंजाब के अंदर गुरु नानक साहब हुए हैं, जिस जो फिर सिख आगे चल के वो अलग हो गए। वो लाहौर में किसी सेठ के पास गया, तो सेठ धंधे में इतना बिजी था, उसका काम बैंकिंग का था, वो संत को पहचान नहीं पाया, संत से बात नहीं की। तो संत के मन में आया कि इसको शिक्षा देनी चाहिए, ये क्या करेगा। तो दूसरे दिन संत वहां गए और कहा कि आप तो बैंकिंग करते हैं, लोगों के सामान रखते हैं, फिर उसको वापस देते हैं बाद में। हाँ यही काम करता हूँ, देखो वो लोग तो बोला एक लोहे का नेल है ये मेरा रखो और मेरे को अगले जन्म में देना। तो उसको याद नहीं, उसने रख दिया, नाम लिखा, बोला कितने पैसा इतना जमा करो, तुम्हारी चीज सुरक्षित है। घर गया तो उसने बोला आज एक ऐसा विचित्र आदमी आया था, एक चीज रखी है और कहा कि अगले जन्म में देना। बोला अगले जन्म में तुम कैसे ले जाओगे कील अपने साथ, और नहीं ले जा सकता हूं। दूसरे दिन परेशान होकर भागता हुआ आया कि महाराज ये अपनी कील वापस ले लो, अगले जन्म तक मैं नहीं ले जा सकता हूं। तो फिर महाराज ने पूछा, फिर सुबह से शाम तक ये इकट्ठा कर रहे हो, इसका क्या करोगे? जब तुम लोहे का एक कीला साथ नहीं ले जा सकते हो तो दुनिया का क्या तुम घर मकान दुकान सोना चांदी परिवार कोई साथ ले जाओगे क्या? कुछ दिनों से एक ड्रामा भक्त लोग आजकल प्रचार किया, एक नई शैली से प्रचार कर रहे हैं भारत में, बड़े अच्छे घरों के बच्चे का मतलब अच्छे खासे बिजनेसमैन अपने परिवार के साथ अच्छे किसी मॉल के सामने जाके थोड़ी देर कीर्तन करके फिर एक ड्रामा करते हैं, लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो ड्रामा दिखाते हैं 10-15 मिनट का 20 मिनट का, फिर ड्रामे का माल बताते हैं, फिर प्रचार करते हैं, फिर पुस्तक वितरण करते हैं। तो इस तरीके से बहुत से लोग इकट्ठे होता जाते हैं। हमने एक जगह पहाड़ों में नैनीताल हिल स्टेशन पे ऐसे उन भक्तों के संग में कीर्तन करके ड्रामा किया तो पूरे रोड के ऊपर 500 आदमी खड़े हो गए ड्रामा देखने के लिए। तो अद्भुत वो ड्रामा, उसका बहुत अच्छा एक सार सबको समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उस ड्रामे में दिखाया जाता है कि एक राजा है, उसकी चार रानियां हैं और राजा की पहली रानी का नाम काया है। राजा उससे बहुत प्रेम करता है, कहीं भी जाता है उसको साथ ले जाता है, कभी उसको छोड़ता नहीं है, हमेशा उसको साथ रखाता है, सजाता है, जजाता है, उसकी हर खुशी की पूरी करता है। दूसरी राजा की रानी का नाम कंचन है, उसका मुंह देखता है रोज, खुश होता है, किसी को वो दिखाता नहीं है, उसको कहता है किसी को तेरी को नजर लग जाएगी, तुम बाहर मत निकलो, तुम यहीं रहो, बस तुम्हारे को देखता हूं सुबह शाम तो मैं सुखी रहता हूं। और तीसरी रानी राजा की का नाम था कामनी, और वो राजा उसके पास आया जाया करता था, प्रेम से बातें करता था। चौथी रानी जो राजा की थी उसका नाम था करुणा, राजा कभी उससे मिला नहीं, कभी बात की नहीं, कभी उसको पूछा नहीं। और फिर ड्रामे में आता है कि आगे चल के राजा बीमार हो जाता है। हम चाहते हैं कभी ड्रामा ये आप लोग यहां करें। अब राजा जब बीमार हो गया तो चारों रानियां वहां खड़ी है, रो रही है कि तो राजा जाने वाला है संसार से, बहुत बीमार है, खटिया पे पड़ा है, पलंग पे पड़ा है, वही उसको डॉक्टर देख रहे हैं। तो उस बीच में राजा ने भयभीत होकर कहा, काया काया सुनो, मैंने कभी जीवन में तुम्हारे को अपने से अलग नहीं किया है, अब इस वक्त पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे रास्ते का पता नहीं लगता है, मुझे बहुत भय लग रहा है, आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। काया ना के महाराज, आप जहां जा रहे हैं वहां मैं आपके साथ नहीं जा सकती। राजा ने कहा, मैंने तो कभी आपको छोड़ा नहीं, जहां भी गया साथ ले गया, आज जहां मेरे को जाना चाह रहे वहां आप साथ नहीं लाए जाएंगी, मेरे साथ नहीं चलेंगी? काया ने कहा, महाराज असंभव, मैं नहीं जा सकती। तो कंचन तुम तो चल सकती हो ना, दूसरी की ओर देख के कहा, तुम्हारे को तो मैं किसी की नजर भी नहीं लगने दिया, तुम्हें सुबह शाम में देखता था, तुमसे मैं बहुत प्रेम करता था, तुम तो मेरे साथ जरूर चलो, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे भय लगता है। कंचन ने कहा, महाराज आपके जाते ही मैं दूसरी शादी कर लूंगी। महाराज और दुखी हो गया, बोला ये क्या, मैं इतना संभाल के तुमको रखा, इतना प्रेम किया, आज तुम ये कहती हो तुम्हारे जाते हुए तो किसी और की हो जाएगी? अरे कामनी तुम तो मेरे साथ चलो, तुम्हारे से तो मैं उठा बैठा सारी जिंदगी, तुम्हारे को प्रेम किया। उसने कहा, महाराज मरने के बाद आपके शमशान तक तो मैं जा सकती हूँ, उसके साथ आगे नहीं चलूंगी। राजा दुखी होकर कहता है, देखो मैं सब लोग सुन लो मेरी कथा, जिनसे मैंने प्रेम किया तीनों को साथ लेके घुमा, बड़ा संभाला पाला पोसा, जिनके लिए मैंने सब कुछ राजपाट दे दिया, आज उनमें से कोई एक साथ नहीं देती है, मैं अकेला कैसे जाऊं? दुखी होकर राजा ऐसे विरलाप कर रहा है तो करुणा आती है, चौथी रानी। और कहती है महाराज ये प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछोगे जो तीनों रानियों से पूछा है। राजा कहता है मैं किस मुंह से आपसे पूछूं, मैंने कभी आपको पूछा नहीं, आपके पास आया नहीं, कभी आपको सुख दिया नहीं, तो मैं आपसे अभी पूछूं तो मुझे शर्म आती है। तो करुणा कहना कहा आप महाराज चिंता मत करो, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहां भी जाएंगे मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं जहां रहेंगे आप मैं आपके साथ रहूंगी, आप मुझे देखो ना देखो लेकिन मैं आपके सुख के लिए आपके साथ रहने वाली हूं। तब राजा के आंखों में आंसू है, चरणों में गिर के कहता है मैं आपके शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करो, अब इस भयभीत रास्ते में आप मेरा सहारा बनो। यहां ड्रामा समाप्त होता है। कैसे लगा आपको इस राजा की कहानी? ये आप सब राजा हो, ये कहानी आपकी है, ये स्त्री भी राजा है, ये पुरुष भी राजा है। पहली रानी काया ये शरीर है जिसको साथ लेके घूमते हैं, सजाते हैं, सिंगारते हैं, सब कपड़े पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, इसको बिंदिया से सेंट परफ्यूम, इसको तो इतना कभी अपने से अलग किया नहीं हमने। मरने के समय बोलते हैं तुम साथ चलोगे, बोलता नहीं चलूंगा। शरीर किसी के साथ गया है आज तक? कंचन धन है वो पेटी में, उसको देखते हैं बड़ा खुश होते, कोई नहीं देखे छुपा के रखते हैं, ऐसा उससे प्रेम करते हैं कि इसको कोई नहीं देखे और उसको हम नहीं देखें तो हमारा सारा दिन में शाम को जाके जब गिनते हैं देखते हैं तब दिल खुश होती है। वो कंचन हमारी दूसरी रानी है, उसको जब पूछा तुम साथ रहोगी, तुम्हारे मरते ही दूसरे के साथ चली जाऊंगी, धन तो दूसरे दिन दूसरे का हो जाएगा, आज वो मरा नहीं दूसरे दिन धन का मालिक तो दूसरा हो जाएगा, पता नहीं सरकार होगी कि बेटा होगा कि पत्नी होगी कि कोई चोर होगा, वो तो उसका होने वाला है नहीं। तीसरे रिश्तेदार कामनी रिश्तेदार है, वो आते हैं बुलाते हैं, तब आते हैं बातचीत करते हैं, लेकिन मरने के समय वो तो सिर्फ शमशान तक दो मिनट आते हैं और आग लगी नहीं, घर गए नहीं, बोले बहुत काम है हम आपके साथ नहीं जा सकते। तो न ये शरीर साथ जाएगा, न धन जात साथ जाएगा, न रिश्ते साथ जात जाएंगे। तब राजा रो रहा है तो उस वक्त परमात्मा चौथा जो हमारा साथी हमारे दिल में बैठा हुआ है, जिसको कभी हम सुनते नहीं है, जिसके बारे में जानने का प्रयास करते नहीं है, उसकी पूजा करते नहीं है, उसको पूछते नहीं है, वो कहता है कि अब तुमने देखा तेरे साथ शरीर वाला को दुनिया वाला संसार वाला कोई नहीं चल रहा है ना, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम कर्मों के कारण किसी भी जोनी में चले जाओ मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। भगवद गीता में तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सारे प्राणियों के मैं हृदय में बैठा हुआ हूं, मैंने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं है, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, तुम मुझे पूछो न पूछो लेकिन मैं तेरे साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं महाराजो अपनी तीन पतियों को अच्छी तरह से देखो, लेकिन असली परमात्मा जो आपका पति है, असल में जगत पति है, जगन्नाथ है, सर्व आत्मा है, उसको भूल जाओगे तो अंत में बहुत पछताओगे, भविष्य उसका अच्छा है जिसने जीवन में अपना संग परमात्मा से जोड़ लिया है, कृष्ण से जिसने अपना रिश्ता जोड़ लिया है, संबंध जोड़ लिया है, भगवान को जिसने अपना मित्र बना रखा है, फ्रेंड बना लिया है, उसका भविष्य उज्जवल है। क्योंकि उस वक्त सभी लोग जानते हैं कि मृत्यु में जब किसी की अर्थी जाती है तो सब राम नाम सत्य कहते हैं, उस वक्त कोई नहीं कहता है कि तुम्हारे साथ तेरा दुकान मकान बैंक जाएगा, कोई बोलता है कि तुम घर लेके जाओ नहीं ना, तभी सब कहते हैं राम नाम सब जाए, तब राम नाम तो पहले लोगे तब जाएगा ना। तो जीवन भर जिसने भगवान से अपना परिचय ही नहीं करा उसका भविष्य क्या अच्छा होगा? जब उठ सकते हैं बैठ सकते हैं खा सकते हैं तब बैठ के भगवान को याद किया नहीं, और मरने के समय पंडित को बुलाया कि तुम बैठ के रामायण पढ़ो, तो पंडित रामायण पढ़ेगा तो मरने के समय पढ़ेगा, जीते जी क्यों नहीं पढ़ते? तो अभी इस वक्त जीते जी जब उठ सकते हैं बैठ सकते हैं चल सकते हैं खा सकते हैं पी सकते हैं तो रोज कुछ समय निकालकर भगवान को याद करना चाहिए, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, क्योंकि उस रास्ते में हमारे साथ एक वो चलने वाला है और कोई दुनिया का साथी चलने वाला नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? दुनिया को कोई साथी चलने वाला नहीं है इस दुनिया में हमारे साथ, जिसको हम इस दुनिया में अपना मानते हैं वो तो हमको जानते ही नहीं है। धर्म क्षेत्र इस घर को आप अपना मानते हो ना, हा? अपना ही मानते हो ना,
ये कभी आपको बोला है कि धर्म क्षेत्र जरा आओ तो मेरे पास, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, कभी इसे बोला है? हाँ, पता है आपको, इस घर में एक चुंटी रहती है ना, जो चुंटी फोमी, वो जब बाहर घूमने जाती है ना तो दूसरी चुंटी को बोलती है, देखो मेरा घर वो है, इस घर को वो भी अपना मानती है। अगर चूहा भी यहाँ कोई रहता होगा तो बाहर दूसरे चूहों को बोलता है ये घर मेरा, वो भी है जो उसको अपना घर मानते हैं। जिसको आप अपना मानते हैं उसके और बहुत क्लेमर है। मच्छर भी यहाँ रहता है, वो भी बाहर घूमने जाता है, बोला मेरा घर ये है। वो भी इसी घर को अपना मानता है, लेकिन ना वो उसका है ना आपका है क्या? कभी मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। ये मॉरिशन सरकार का, ये देखो मेरे पास एक नोट पड़ा है। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। इसको मैं अपना मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ? इस वक्त मेरे पास पड़ा है, मेरा है ना, और सब लोग इसको ऐसे जेब पता है सबने कहाँ बनाई हुई है? दिल के ऊपर, दिल के ऊपर जेब होती है। हरे कृष्णा कहने की जरूरत नहीं है, हमने जेब दिल पे रखा ही है और सब लोग माता जी लोग इधर ही पैसा सब घुसा के दिल में रखती हैं। ये दिल जो है पैसे के रखने की जगह है ये, और इसको अब बाहर जाके बैंगन वाले से बैंगन ले लो तो बैंगन वाला कहेगा ये मेरा है, आपसे गया दूसरा उसका मालिक बन जाता है कि नहीं बन जाता है? कितने जेब इस नोट ने बदले हैं और सबने माना कि मेरा है, लेकिन कभी इसके ऊपर पढ़ा है क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर क्या लिखा है पढ़ो। ये बैंक ऑफ मॉरिशस का है, किसी का नहीं है, सभी मूर्खता से इसको अपना मानते हैं और इसके ऊपर लिखा है बैंक ऑफ मॉरिशस का, ये सच है कि नहीं है? ये तो सत्य आपके सामने है ना। ऐसे हम भी इस दुनिया में ये घर मेरा मानते हैं, ये दुकान मेरा, ये बेटा मेरा, ये पत्नी मेरी, असल में भगवान इसके ऊपर लिखा है हम सबके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ कृष्णा। ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं है। ये बात समझ में किसी को आ जाए वो सुखी रहेगा। कुछ भी हमारा नहीं है, हमारे जेब में है तो हमारा है, और जैसे ही बाहर गया तो दूसरे का हो गया, लेकिन असल में किसका है ये जानना चाहिए। असल में ये रिजर्व बैंक ऑफ मॉरिशस का है, राइट? तो असल में हम सब कुछ, घर से लेके दुकान मकान से लेके स्त्री परिवार पुत्र तक जो कुछ भी है असल में भगवान का है। ईशा वाशा इदम सर्वम जगत अव्यक्त किंचित, जो कुछ इस दुनिया में दिखता है चलता फिरता अथवा खड़ा, इस सब का मालिक श्री कृष्ण कहता है मैं हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम, मैं सब प्राणियों का ईश्वर हूं। ये प्रकृति, ये पुरुष, ये दुनिया, सारी संसार मैंने बनाया है, मैं उसका मालिक हूं। जो इसको जानता है, भोक्तारम यदि तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं भोगता हूं। दुनिया में जब हम भोगता बनते हैं तब हम भोंकते हैं, भोंकते का मतलब क्या होता है? कुत्ता बनते हैं। भोगता जब बनते हैं तब भोंकते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये आपके यहाँ मॉरिशस में भी कुत्ते मैंने देखे हैं, बहुत सारे हैं, है ना? जब आप उस एरिया से जाओगे तो वो कुत्ता भोंकेगा कि यहाँ क्यों जा रहे हो, क्या उसको किसी ने अपॉइंटमेंट किया है वहां उसका किसी ने उस एरिया का उसने किसी ने चार्ज दिया क्या कुत्ते को कि तुम यहाँ किसी जो आए उसको मत आने देना? नहीं, उसने अपने आप मान लिया कि ये मेरी एरिया है, यहाँ कोई और आएगा तो मैं भोंकूंगा। उस कुत्ते को किसी ने वहां का दिया है क्या चार्ज कि यहाँ कोई आए उसके ऊपर तुम भोंकना? नहीं ना, वो अपने मन से मान के ये मेरी एरिया है, यहाँ कोई आएगा तो मैं जरूर भोंकूंगा उसके ऊपर। लेकिन उसके भोंकने से कोई फर्क पड़ता है? डंडा मार के उसको भगा देगा कोई? तो उसका थोड़ी वो जी चीज है कोई। तो इस वक्त मॉरिशस में आप कहते हैं ये मेरा घर है, 500 साल पहले कोई फ्रेंड यहाँ खेती करता था, वो कहता था ये खेती मेरी है, वो कहाँ चला गया? तो ये चीज हमारी है क्या? जिसको हम अपना मानते हैं वो हमको जानते नहीं। और ये तो हुई जड़ चीजों की बात, और जिसको हम रिश्तेदार बंधु हम कुछ मानते हैं वो हमको पहचानते नहीं। जो हमारे अपने रिश्तेदार जिनको हम मानते हैं वो हमको पहचानते नहीं है। अगर हमको पहचानते तो हमारे दादा का हमारे घर में अभी होना चाहिए ना। दादा कहाँ गया? धर्म क्षेत्र आपके दादाजी कहाँ हैं? तो गुजर गए तब आपने क्या कहा? जब तक थे तब तक ठीक है, चल रहे थे फिर रहे थे, कुछ कमा रहे थे दे रहे थे तब तक ठीक है, जब नहीं चलना हुआ पड़े तब आपने क्या कहा? चला गया, चला गया। इसका मतलब उस शरीर को आप दादा मानते थे, उसको तो एक घंटा भी घर में नहीं रखते हो। उसके अंदर आत्मा है, उसको पहचाना था कि दादा के अंदर आत्मा है? कभी पहचाना? शरीर को ही दादा माना, और शरीर जब काम नहीं किया तो जाके अग्नि संस्कार किया, फिर उसकी अस्थियां हड्डियां। आज मुझे कोई पत्तू की पत्नी कह रही थी कि हमारे पिताजी की हड्डियां अस्थियां हमने रखी है, उसको गंगा प्रवाह करना है। मैंने बोला रखी कहां है? वैसे ही पूछा मैंने, रखी कहां है? तो बोला उसको घर में नहीं लाते हैं, घर के बाहर या शिवालय में टांग रखी है। घर में क्यों लाते हैं, क्यों नहीं लाते हैं? बोला हड्डियां हैं, कहीं बाबा भूत हो गया तो। अरे जिस बाप ने घर बनाया था उसकी हड्डियां घर में नहीं रखते हो? घर में नहीं लाते हैं उसकी हड्डियां? और इतने मूर्ख हैं, बकरे की हड्डी फ्रिज में रखते हैं, सब संभाल के अच्छी तरह। बाप की हड्डी गैरेज में, बकरे मुर्गे की हड्डी फ्रिज में, डीप को फ्रीजर में रखते हैं। मूर्ख हैं कि नहीं है दुनिया वाले, मैं पूछता हूं आपको। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हमारा कहने का एक सिर्फ तात्पर्य यह है कि जो हमारा अपना मित्र है, बंधु है, साथी है, सज्जन है, आप लोग सब बचपन में जब शिवालय जाते थे तो एक मंत्र पढ़ते थे, तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव, तुम्हेव बंधु च सखा तुम्हेव, तुम्हेव विद्या दृढ़म तुम्हेव, तुम्हेव सर्वम मम देव देव, पढ़ते थे कि ना? ये वेद का मंत्र है। इसमें हम कहते हैं भगवान तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही धन, तुम ही सब कुछ हो, हमारा सब कुछ। ये हमारे को शिक्षा दी जाती थी, इसका मतलब वही हमारा सब कुछ है। बस इस एक चीज को हम मान लें, और यही भगवत गीता में भगवान कहते हैं पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता मह, मैं इस दुनिया का माता हूं, पिता हूं, पालन पोषण करने वाला हूं। तो वो जो कह रहा है मैं आपका हूं, उससे अपना रिश्ता जोड़ दो। इस दुनिया वाले जो भी आपको अपना कहते हैं उनको कहो ठीक है, जब तक जीते हैं आपसे निभाएंगे, लेकिन उसके बाद आप साथ चलने वाले नहीं है, ना हम आपके साथ चलने वाले। सीधी बात तो ये है, रिश्ते नाते अपने निभाओ, बेटे को बेटे के नाते निभाओ, पत्नी को पत्नी के नाते, भाई को भाई के नाते, पिता को पिता के नाते, ये सब रिश्ते नाते का व्यवहार निभाओ, लेकिन रिश्ता असली भगवान से जोड़ो, प्रेम असली भगवान से करो। प्रेम प्रेम कृष्ण के लिए, व्यवहार संसार के लिए, लेकिन दुनिया उल्टी है। प्रेम तो दुनिया से करती है और भगवान से व्यवहार करती है। संडे संडे को जाके भगवान को मुंह दिखा के आती है, नहीं तो जब मूड होता है तब जाके छह महीने के बाद कपड़े बदलते हैं मंदिरों के अंदर, जैसे जैसे ना वैकुंठ का म्यूजियम बना के रखा है, मूर्ति को छह महीने कपड़े पुराने पहने होते हैं चमकीले, छह तो तुम छह महीने कपड़े पहन के घूमते हो गए घर में अपने, तो फिर भगवान को छह छह महीने एक ही कपड़े पहना के रखे शिवालय में क्यों? तो भगवान से व्यवहार करते हैं और प्रेम संसार से करते हैं। हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए, संसार से व्यवहार करना चाहिए, तो सुखी रहेंगे, क्योंकि वही हमारे साथ जाने वाला है, वही हमारा सगा संबंध है। और उस संसार में सुखी रहने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत इजी मेथड बताया है, भगवान के नाम को गाओ, नाचो और प्रसाद खाओ। मूर्ख भी ये काम कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, नाचो गाओ खाओ कौन नहीं कर सकता है? कोई भी कर सकता है। और इतना करते हुए भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान से संबंध हो सकता है, संसार के दुखों से पार हुआ जा सकता है। तो हमारी आपको विनती है, ये श्रावण का बहुत बड़ा एक एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, भगवत भक्ति के लिए उत्तम महीना है। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य 10 तारीख को होने वाला है, तब तक हम आपसे विनती करते हैं कि कुछ दिन आप ये महीने में जो पहले भगवान का नाम लेते हैं उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए,
कार्तिक का महीना, सॉरी चतुर्मास का दूसरा महीना भी शुरू हुआ है, और जो आज इसको पहली बार सुन रहे हैं मन में ये भाव आए तो आज से भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए, भगवान से अपना रिश्ता जोड़ना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत।